ओम शांति। आज का स्लोगन बोलो, किसे याद है? इजी बन जाओ तो हर कार्य इजी हो जाएगा। इस पे आज चर्चा करेंगे, क्योंकि जीवन की ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट धारणा है, सरलता, सहज भाव से जीवन जीना, इजी गोइंग नेचर रखना, लौकिक दुनिया में भी और ज्ञान योग के मार्ग पर भी इसका बहुत महत्व है। दीदी ने एक बात शुरू की थी, उसी से हम क्लास शुरू करेंगे। कई लोग बातों को पकड़ कर बैठ जाते हैं, छोड़ते ही नहीं, हल्के नहीं होते। हमें इसको ठीक करना है। तो सरलता और हल्कापन दोनों का बहुत गहरा संबंध है, और जिस आत्मा के पास ये दोनों हैं वो शक्तिशाली बन जाते हैं। तो हमें बहुत पावरफुल भी बनना है, तब हम बहुत सरल चित्त भी हो पाएंगे। क्योंकि भिन्न भिन्न परिस्थितियां जीवन में आती हैं, समस्याएं आती हैं, बीमारियां आती हैं, सेवाओं में भी बहुत कुछ बातें आती हैं जीवन में। लेकिन यदि सहज भाव से रहेंगे तो सहज ही पार कर लेंगे। मुझे अपने जीवन का सुंदर अनुभव इस बात से जुड़ा हुआ है। 1971 अव्यक्त बाबा की बहुत सुंदर मुरली सरलता पर चली थी, आप देख सकते हैं उसको। एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं। 5 बातें बाबा ने सरलता के लिए कही थी। यदि तुम सरल होंगे तो तुम्हारे संस्कार भी सरल हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है संस्कारों की सरलता। कुछ लोग पूरा जीवन किसी भी संस्कार की जटिलता के कारण आगे नहीं बढ़ पाए, वहां के वहीं रह गए। बहुत योग्य होने के बाद भी एक कड़े संस्कार ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। तुम सरल होंगे तो संस्कार भी सरल हो जाएंगे। दूसरी बात, तुम सरल होंगे तो बीमारियां भी सरल हो जाएंगी। बहुत बड़ी चीज है, बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कैंसर भी, डायबिटीज तो कॉमन हो गई है, स्वीट किलर कहते हैं डॉक्टर इसको, मनुष्य को पता नहीं चलता, लेकिन ये किसी ना किसी अंग पर गहरा बुरा प्रभाव डाल देती है, उसको डैमेज करने लगती है, वीक करने लगती है। सरल चित्त होने से देखिए क्या होता है। छोटी सी एक बात, मोटे शब्दों में, सिंपल शब्दों में, हमारे ब्रेन में बहुत सारे केंद्र हैं, उनसे कुछ रसायन का सिक्रेशन होता रहता है। डॉक्टर साहब ठीक है, अगर किसी मनुष्य को क्रोध आए तो बहुत गड़बड़ होती है, यहां से न जाने कैसा कैसा केमिकल और कैसी कैसी लिक्विड्स वहां से सिक्रेट होते हैं, उनका स्राव होता है। और जो सरल चित्त है, जो मनुष्य बहुत प्रसन्न है, जो किसी भी चीज को भारी रूप से नहीं ले रहा है, जिसने कुछ भी सरल और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया है, गंभीर नहीं किया है, उसके ब्रेन से बहुत अच्छे रसायनों का स्राव होगा, शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा। कुछ बहुत गहरा इफेक्ट मनुष्य के हार्मोन्स पर पड़ता है, उसकी खुशी का, उसके सुंदर विचारों का, उसके सरल स्वभाव का। इसलिए बीमारियां भी सहज रूप से विदाई ले लेती हैं। अब एक व्यक्ति को बहुत सीरियसली कोई बीमारी आ गई है और वो व्यक्ति बहुत परेशान है, सीरियस बीमारी है तो परेशान ज्यादा है, चारों ओर भी उसके परिवार में उसके साथ ही सब लोग भी उसके प्रति इसी तरह का दृष्टिकोण रखते हैं कि बीमारी बहुत सीरियस है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन यदि वो व्यक्ति सरल है, देखिए अगर ऐसी बात है तो बीमारी सीरियस होती जाएगी, लेकिन अगर वो व्यक्ति सहज भाव से है, वो ये सोच रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, बीमारी सीरियस है लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगी, तो आंतरिक शक्तियां, ब्रेन से होने वाले ये श्राव और सबकी भी ऐसी भावनाएं उसको ठीक कर देंगी। हमने तो कई केस देखे, क्योंकि मेरे पास लोग आते रहते हैं, मैं भूल जाता हूं अनुभवों के लोगों के, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे अनुभव लोग मुझे सुनाते हैं कि ये सीरियस बीमारी थी, हम ठीक हो गए हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था, पर हम ठीक हो गए हैं। बहुत खुशी होती है ये बात सुनकर। निश्चित रूप से बाबा की दुआएं भी उनके साथ होती हैं, उनके पुण्य कर्म भी उनको मदद करते हैं। इन दो के बिना तो कोई चीज मदद नहीं कर सकती। तीसरी चीज बाबा ने कही, तुम सरल चित्त होंगे तो तुम्हारी समस्याएं भी सरल हो जाएंगी। देखिए कितनी सुंदर बात है, समस्याओं में भी संसार घिरता जा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे कैसे ये काम होगा। चौथी बात कही, तुम सरल होंगे तो तुम्हारे संबंध संपर्क उनमें भी सरलता आ जाएगी, लोग समीप आएंगे। जो व्यक्ति सरल चित्त होता है उसे सहयोग देने के लिए सब उसके समीप आने लगते हैं, और जो व्यक्ति सरल नहीं है उसे लोग दूर होने लगते हैं। और पांचवी बात जो हम सबके लिए और सुंदर है, तुम सहज भाव से जिएंगे तो योग भी सहज हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज की बुरी छाप दिमाग पे रहेगी नहीं। सहज भाव से जीने वालों का को सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि कोई भी बात छोटी बड़ी जीवन में आती है लेकिन वो दिमाग पर ठहरती नहीं है, होल्ड नहीं करते हैं मनुष्य उसको, जल्दी छोड़ देते हैं, वो चली जाती है, समाप्त हो जाती है। तो हम बातों को भी पकड़ कर न रखें, और हम बाबा के स्लोगन को जानकर, इस सुंदर महावाक्य को, सीक्रेट को समझकर अपने मन में एक सुंदर धारणा बना लें कि मुझे सहज भाव से जीवन जीना है। पसंद है? बहुत भाई आए हैं आज, पसंद है? सहज भाव से जीना तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। मुझे कभी की एक सुंदर प्रैक्टिकल घटना याद आ रही, सत्य। देखिए कैसे सहज भाव और असहजता क्या करती है। हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, जब ओम शांति भवन बना, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सन्यासियों की कॉन्फ्रेंस, महामंडलेश्वरों की, धार्मिक सम्मेलन, पीस कॉन्फ्रेंसेज, बहुत कॉन्फ्रेंस हुई, सेवाधारी बहुत आते थे। पांडव वन छोटा था, सब कार्य वहीं करना पड़ता था। एक घटना सुनिए, एक सेवादारी रात को 10 बजे सेवा करके, उसका काम है कुछ चल रहा है पेंटिंग का, देर से किचन में पहुंचता है। अब जब वो किचन में आता है तो वहां कोई नहीं है, 10:15 बज गए हैं। उसने सब पतीले खोल के देखे, एक में थोड़ी सी दाल पड़ी है, सब्जी पड़ी है, रोटी है वो भी टूटी हुई है, ठंडा हो गया है, उसको बहुत गुस्सा आया, कोई ध्यान नहीं रखता हमारा, सेवा में तो बुला लिया है, हमारी कोई पूछ नहीं है, और वो परेशान होके कमरे में जाता है, फिर नहीं आऊंगा सेवा में, ये गलती कर दी मैंने, यहां कोई नहीं पूछता किसी को, यहां कोई किसी का नहीं, और वो नाराज होके कमरे में जाता है। नींद आएगी? अब करवटें बदल रहा है, खाना भी नहीं मिला, भूख भी लग रही, पेट में चूहे भी कूद रहे हैं, लेकिन नाराजगी के कारण क्या करूं, एक दो को बताता भी है, क्या करें लोग। अभी तब तक 10:30 बज गए हैं, सब लोग सो गए हैं। अब एक दूसरा केस, दूसरा सेवाधारी आता है, देखता है 5-7 की दाल बची है, 2-3 की सब्जी है, रोटी टूटी हुई पड़ी, वही सिचुएशन। वो खुश होता है, वाह 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 वाह, तुमने, मैं सबसे लास्ट में आया तो भी मेरे लिए भोजन रखा, रोटी भी तोड़ के रख दी ताकि मुझे कष्ट ना हो, और वो आनंद पूर्वक उन्हें खाकर और बाबा को धन्यवाद देता हुआ सोता है। सवेरे फर्स्ट क्लास उसका योग लगता है, अपने भाग्य पर उसको गर्व होता है। क्लियर है ना बात? सहज भाव हमारे जीवन को आनंदित करता है, हमारी शक्तियों को बचा देता है, और कॉम्प्लिकेटेड नेचर, हर बात को सीरियसली लेने की नेचर, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस दूसरों से, ये हमारे जीवन की यात्रा को भारी कर देती हैं। तो हम सभी सरल स्वभाव बनाएं। अब बहुत बड़ा इसका फायदा वर्तमान सिचुएशन में, जबकि मनोवैज्ञानिक भी ये देख रहे हैं, ये मान चुके हैं कि बहुत सारे लोग इस संसार में पास्ट में जीते हैं, जो बीत गया ना उसके प्रभाव में जीते हैं संसार के बहुत लोग। पास्ट के प्रभाव ब्रेन पर छाए रहते हैं, पास्ट 10-20 साल का ही नहीं, कल का, आज का, जो आज हमारे साथ हुई उसको हम लेकर चल रहे, होल्ड करके चल रहे हैं उसको, तो कठिनाई होती है ना। मैंने कल परसों भी क्लास में ये उदाहरण दिया था, फिर दे देता हूं। आपको एक गिलास दिया जाता है जो पानी से भरा हुआ है, देखिए उसमें 200 ग्राम पानी होगा ज्यादा गिलास में। आपको कह दिया जाए इसको पकड़ के ऐसे रखो 5 मिनट, 5 मिनट में भारी लगेगा ना, और कह दिया जाए 1 घंटे तक पकड़ के ऐसे ही रखो, तो हाथ का क्या हाल हो जाएगा? हाथ ही पैरालाइज हो जाएगा ना, बुरा हाल हो जाएगा। और जिसने बातों को दिमाग में पकड़ कर रख लिया है 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, उसके ब्रेन का क्या हाल होगा? सोचने की बात है। इसलिए जो लोग पास्ट में जी रहे हैं, पास्ट की बातों को पकड़ कर बैठे हैं, भूलते नहीं, कई तो कहते हैं मैं भूलूंगा नहीं, आनंद आता है उन्हें उन बुरी चीजों को याद करके, मैं नहीं भूलूंगी, इस बात को कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा, ना भूलो, फायदा या नुकसान? बहुत नुकसान होगा। जो सरल चित्त व्यक्ति है वो सहज भूल जाता है। देखिए सूक्ष्म बात आप गौर करें, कौन सी चीज मनुष्य को भूल जाती है, कौन सी नहीं भूलती। हमसे बहुत लोग रोज मिलते हैं, शांतिवन होते हैं तो कम से कम 500 तो आते ही है रोज। अब नाम भी बताते हैं कोई कोई, ये भी कहते भाई जी हमारा नाम याद रखना। अब कहना तो पड़ता है याद रखेंगे, परंतु याद रहेगा? अब मान लो 20 लोगों ने अपने नाम बताए तो नहीं याद रहेंगे, लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा आता है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए या किसी भी फील्ड में, वो अपना नाम बताता है, हम उसको याद रखते हैं। कोई विशेष बात है, कोई विशेष घटना है, जिस बात को हम लाइटली लेंगे वो भूल जाएगी, जिस बात को सीरियसली लेंगे वो अंदर छप जाएगी। अटेंशन देना है हमें पास्ट की बातों को, यदि हम भुलाना चाहते हैं हल्का करें। हमसे भी कोई गलती हुई हो, मान लो कोई ऐसी सीरियस गलती हो गई, कईयों के साथ ऐसा हो गया है कि वो अपने को भी क्षमा नहीं कर पाते हैं, गिल्टी फीलिंग, अपराध बोध कहते हैं हिंदी में, ये गिल्टी फीलिंग बनी रहती है, मैंने ये क्या किया जीवन में, मैंने इसके साथ क्या किया, मैंने इधर ये क्या कर दिया, अपने को दोष देते रहते हैं, कोसते रहते हैं, बाबा से भी क्षमा मांगते रहते हैं, लेकिन अपने को क्षमा नहीं कर पाते। सहज भाव से जीते होंगे तो अपने को भी क्षमा कर देंगे, लगेगा ना भाई जो कुछ भी हो गया, अब ज्ञान का समय था, विकारों का प्रभाव था, मनुष्य गलती होती, हमने बुरे संग में आई उसमें कर दी, पूरा हो गया, अब हम बाबा की गोद में आ गए हैं, अब हम प्रभु की छत्र छाया में आ गए हैं, अब हमें इस जीवन को एंजॉय करना है, अब अपने श्रेष्ठ भाग्य को बनाना है, तो मुझे पास्ट में नहीं रहना है। एक सुंदर चिंतन हमें पास्ट के प्रभाव से मुक्त कर देगा ना, होगा ना ऐसे? लेकिन बहुत सीरियसली लेते लेते सोचते सोचते बाबा क्या कहेगा। देखो ये भी मनुष्य अच्छे संकल्प समझता है, बाबा क्या कहेगा, मेरे साथ क्या होगा, इनकी भी जरूरत नहीं, बाबा तो पहले ही क्षमा कर देता है। बाबा के चित्त पर किसी की बात ठहरती नहीं, सुरेश भाई या ठहरती है, वो तो अत्यंत निर्मल है ना, पवित्रता का सागर। तो कोई सोचे कि बाबा हमें इस नजर से देखता होगा, बिल्कुल नहीं। बाबा की नजर तो सभी के लिए बहुत श्रेष्ठ, बहुत कल्याणकारी, रहम और दया से भरी हुई, क्षमा भाव की दृष्टि, सबको देने की फीलिंग। इसलिए भगवान से इस तरह डरने की आवश्यकता नहीं। हमने अपनी बात उसके सामने रख दी, सहज भाव धारण कर ले पुनः, तो जो कुछ भी आज तक हुआ है, हमने किया है, हमारे साथ हुआ है, बुरी बुरी बातें हुई हैं, कईयों के जीवन में मौतें हो गई हैं खराब खराब, अब वो सचमुच ही बहुत भयानक चीज हुई, बहुत स्नेह का संबंध था, एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, एक दूसरे के सहारे थे, मृत्यु हो गई, अकेले हो गए जीवन में, उदासी भरा जीवन हो गया, कोई कमाने वाला नहीं रहा, निश्चित रूप से मनुष्य पर इसका असर आता है। लेकिन अब जब हम बाबा के पास आ गए हैं, जब ज्ञान के दिव्य प्रकाश से हमारे चित्त का अंधकार दूर हो गया है, तब हमें उस अंधेरे में नहीं रहना है, पास्ट के प्रभाव से अपने को भारी नहीं रखना है। सभी संकल्प करें, जो कुछ आज तक हुआ वो कितना भी बुरा हुआ, लेकिन वो बुरा भी हमें भगवान के पास ले आया ना किसी ना किसी तरह, अब हमारे सुख भरे दिन शुरू हैं, अब भाग्य निर्माण के दिन चल रहे हैं, अब ईश्वरीय आनंद लेने का समय चल रहा है, अब हम इसमें संकल्पों को लाएं, समय इसमें व्यतीत करें, इस जीवन को बहुत सुखकारी और आनंदकारी बनाएं, ऐसा हम चिंतन करेंगे तो सभी पास्ट के इफेक्ट को पूरी तरह समाप्त करें। किसी के शब्द आपके कानों में गूंजते रहते हों, सबसे बुरी चीज होती है मनुष्य के शब्द, और उसमें भी अपनों के बोल, जिन्हें हमने बहुत प्यार दिया हो, जहां आपस में बहुत गुड फ्रेंडशिप हो, बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हो आपस में, लौकिक परिवार की हम बात करें, बहुत सुंदर हो सब कुछ, लेकिन किसी भी कारण से कुछ बात हो गई, झगड़ा हो गया, और दूसरे व्यक्ति ने बहुत बहुत गलत शब्द बोल दिए, दो चार नहीं अच्छी तरह से, तब वो याद रहते हैं, कड़वाहट तो संबंधों में आ गई, जहर तो भर गया, लेकिन वो शब्द भूलते नहीं हैं। कैसे भूलेंगे वो शब्द, बोलो, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, हम सब के लिए अर्जुन, सहज भाव और बाबा के बोल जितने हमारे ब्रेन पर मन पर छाए रहेंगे, ये बाकी बोल ढीले धीमे बिल्कुल नीरस प्रभावहीन लगेंगे और धीरे धीरे सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो बाबा जो हमें रोज मुरली सुनाते हैं बहुत सुंदर, उस मुरली में रोज दो चार बातें तो जीवन को खुशियों से भरने वाली, ईश्वरीय नशा देने वाली, हमारे विचारों की दिशा को बदलने वाली, हमारे कदमों को तेज करने वाली, हमारे सिर के ऊपर से कोई काली छाया बुरी दबाव उसको हटाने वाली होती है ना, रोज होती है ना, अव्यक्त मूल्यों में तो विशेष, लेकिन साकार मूल्यों में भी दो चार बातें रोज बहुत गहरी हमें मिलती हैं। भगवान हमसे बातें करते हैं ना, हमें जगाते हैं, हमारी सोई हुई चेतना को जगाते हैं, वो यदि हमारे मानस पटल पर छाए रहें, सोच लें सभी, तो बाकी जो कुछ छाया है वो तो आप ही डिलीट होता रहेगा ना, हल्का लगने लगेगा। वैसे भी मनुष्य देख ले आप, किसी मनुष्य को बहुत ज्यादा दुख रहा हो, दो साल पांच साल दस साल दुखों में समय बीता हो, लेकिन तुरंत सुख आ गए हो जीवन में, मान लो किसी को अच्छा खाना नहीं मिला दस साल, दस साल बहुत बड़ा समय है, लेकिन अब अच्छा भोजन मिलने लगा, उन्हें प्यार नहीं दिया था किसी ने, अब प्यार मिलने लगा, तो कितने दिन में वो दुखों की छाया भूल जाएगी? 5-7 दिन ही लगेंगे। सुख की नींद आने लगी, कोई चिंता नहीं रही, अब सब कुछ सुंदर हो गया। हफ्ता, 2 हफ्ता, मुश्किल से 1 मास, सब कुछ भूल जाएगा और वर्तमान में जो सुख मिल रहा है उसका आत्मा आनंद लेने लगेगी। हम भी जो सुख हमें बाबा दे रहा है, मैं तो सबको कहता हूं अमृत वेले का सुख तो है ही, लेकिन वो सुख सबका अलग अलग है ना। किसी को नींद का सुख हो जाता है, किसी का योग अच्छा नहीं लगता, हो जाता है ना ये तो। लेकिन मुरली का सुख बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। सभी सुख पर ध्यान देंगे, मुरली जब हम सब सुनने आए तो इस 1 घंटे में सुखी होकर लौटे रोज। ये नहीं मुरली सुन ली बस, सुनाने वाले ने सुना दी, हमने नियम निभा दिया, हम आगे रोज क्लास में, बाबा पूछेगा बच्चे रोज मुरली सुनी, हम भी हाथ उठाएंगे सुनी। लेकिन सुख लिया रोज अपने रिकॉर्ड में, ये सुख भरते चलें। है या नहीं मुरली का सुख? बहनों को है, विदेशियों को है सुख, मुरली सुख। विदेशों में कई भाई बहने अलग अलग दूर दूर रहते हैं, खुद ही पढ़ते हैं नेट पे या कैसे भी, लेकिन इसका हम सुख लें और एक ही संकल्प कर लें, जब मुरली सुने भगवान मुझसे बातें कर रहा है। यही तो था ना, आज भी याद दिला रहा था बैठकर, कल भी था हंसी करता है बाबा, तुम मुझे क्या समझते थे पतित पावन, सोचते थे गंदी दुनिया में आओ हमें पावन बनाओ। भगवान सहज भाव से किस तरह हमसे बातें करता है, हमें जैसे आनंदित करता है, जैसे छोटे बच्चों को खिलाया जाता है ना बचपन में, माता ये सब जानती है, खूब खिलाएंगी उसे, खेलना खेलना, भोजन खिलाना नहीं, खेलना खिलाएंगी उसे, तो कैसे बच्चे आनंदित होते हैं। बाबा भी हमें ऐसे ही करता है ना, आनंदित करता है, अच्छी अच्छी बात सुनाकर हमारे कष्टों को हर लेता है। तो ये छपता चले हमारे दिमाग पर तो बाकी सभी बातें हल्की होती जाएंगी। तभी उन्हीं दिनों बाबा ने मुरली चलाई थी, गरम और नरम, किसी चीज को नरम करके ही मोड़ा जाता है ना, और उससे पहले उसे गरम करना पड़ता है, लोहा भी हो ना हार्ड, बहुत हार्ड, उसे गरम कर देते हैं सॉफ्ट हो जाता है, आराम से मोड़ देते। आप में से कोई गया हो भिलाई, जहां रेलवे लाइन बनती है ये ना ट्रैक, और भी कई चीजें बनती, हमने देखा तो 5 मिनट में ही कैसे वो बड़ी सिल लोहे की तपी हुई लाल और फटाफट लंबी हुई, और लंबी हुई 5-7 मिनट में देखो तो 100 मीटर की रेल की पटरी बन के बाहर फेंक दी उसने। गरम किया, नरम हुआ, मुड़ गया। हम भी जितनी गर्मी में रहेंगे, कौन सी गर्मी? ईश्वरीय नशा एक गर्मी है, योग तो है ही, बाबा की महावाक्य सुना रहा हूं। जितना ईश्वरीय नशा होगा, उन दिनों स्वमान की चर्चाएं ज्यादा नहीं थी, ये थोड़ा बाद में हुई है, जितना ईश्वरीय नशा होगा तुम्हारे संस्कार विचार नरम होते जाएंगे, तुम्हें मोल्डिंग नेचर होती जाएगी, संस्कार सहज मुड़ सकेंगे, तो जो सरल चित्त व्यक्ति है वो सहज ही स्वयं को मोड़ लेता है। मुड़ना अच्छा या नहीं? हम जा रहे हैं, रास्ते में सांप पड़ा है, सोया हुआ है, हम क्या कहेंगे सांप को जगाओ और हटाओ तब हम चलें, या मुड़ के निकल जाएंगे? सामने गड्ढा आ गया है, हम आराम से मुड़ के चल जाते हैं ना, गाड़ी चला रहे छोटा सा गड्ढा आ गया, हम उसको बचा के निकल जाते हैं ना, ये थोड़ा ही कहते हैं गड्ढा भरो फिर हम कार निकालेंगे। जो व्यक्ति मुड़ना जानता है, जिसने झुकना जान लिया, समझ लो उसने जीवन जीना सीख लिया। हम अपने को मोड़ना सीखें, सरल चित्त व्यक्ति हर परिस्थिति में आराम से मुड़ जाता है, और जो मोल्ड होते हैं उनकी एक बहुत प्रैक्टिकल सी पहचान दिखाई देगी, संगठन में परिवारों में एक ने कहा, दूसरे ने माना। ठीक है, सिखों में तो है ना, एक कहे दूसरा माना है, ये है गुरु नानक कहते वो है सच्चा ज्ञानी। ज्ञान ही ये है कि एक ने कहा दूसरे ने माना, सहज भाव। इसमें जो अट जाते हैं, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, आई एम राइट, ये जो ईगो बीच में काम करता है, मैं राइट हूं। ठीक है, हम राइट भी तो होंगे ना, हर जगह हम गलत थोड़ा ही होंगे। मैं राइट हूं, मैं सत्य हूं, तो भी समय पर मुड़ जाना, ये अपने सत्य की, अपने राइट होने की ब्यूटी है। हम सचमुच राइट हैं तो हमें बहुत शालीन होना चाहिए, हम सत्य हैं तो हमें रॉयल्टी होनी चाहिए। जहां रियलिटी है, जहां ट्रूथफुलनेस है, वहां रॉयल्टी भी होनी चाहिए। तो हम अपनी ये नेचर बनाएंगे परिवारों में भी, बहने माताएं बहुत बैठी हैं, मुड़ना सीखें, जो मैं कहूं वही हो ये नहीं, ये सरल चित्त व्यक्ति के लक्षण नहीं है। और समस्याएं भी सहज हो जाएंगी, पर मुझे कुछ भाइयों को देखकर एक अच्छी बात और याद आ गई। प्रैक्टिकल है कईयों की, मैं नाम नहीं लूंगा, यहां बैठे हैं सामने। हम सहज तो हमारा कार्य भी, सुरेश भाई, गड़बड़ होगी ही नहीं, टाइम पे वो पानी आएगा, टाइम पे सब कुछ, जितने भी साधन हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, मशीनें हैं, सब ठीक काम करेंगी। हमारे संकल्पों का इफेक्ट, हमारे पास अगर स्थूल मशीनें हैं ना, कंप्यूटर्स हैं, और हर एक डिपार्टमेंट में कई मशीनें हैं, उन पर भी गहरा पड़ता है। हमारी मनोस्थिति श्रेष्ठ तो सब कुछ भी ठीक ठीक काम करेंगे। आपके पास कार भी है ना, उसका इंजन भी ठीक रहेगा, और मन की स्थिति खराब है तो बार बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेगी, परेशान होते रहेंगे कि ये क्या हो रहा है। ठीक है द्वारका, होता है ना ऐसे, हम ठीक, सब कारोबार ठीक, बहने माताएं ध्यान देंगे, स्थिति ठीक तो गृहस्थ में सब कुछ ठीक, नहीं तो समय पे तेल ही नहीं होगा। समय पे देखेंगे वो जो मशीन, छोटा सा इंजन है ना, वो फेल हो गया है, अब बाइंडिंग कराने के लिए आबू रोड भेजना पड़ेगा, 3 दिन लगेंगे, परेशान होंगे, क्या करें। लेकिन स्थिति ठीक, सब कुछ ठीक, योग बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? सरल चित्त व्यक्ति व्यर्थ से सहज ही मुक्त रहता है। सारा दिन ही जो घटनाएं आसपास होती हैं, जो कुछ दिखाई देता है, जो हम करते हैं, उसकी छाप दिमाग पर गहरी पड़ी नहीं होती। अन्यथा मनुष्य जो कुछ कर रहा है, सूक्ष्म बात पे ध्यान देंगे, जो कुछ हम कर रहे हैं, उसकी गहरी वेव्स हमारे ब्रेन में प्रिंट होती जा रही हैं। पर यदि हम सहज भाव से जी रहे हैं तो बहुत सारी चीजें प्रिंट हो ही नहीं रही। हमने कुछ देखा, 4 लोग लड़ रहे हैं, अगर हम सीरियस हैं तो हम बहुत सीरियसली सोचेंगे, क्यों लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सब लोग देख रहे हैं, क्या होगा, नाम बदनाम होगा, वो हमारे ब्रेन पर प्रिंट हो रहा है। वो जब रिएक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं हमें कष्ट पहुंचाएगा। हम सहज भाव से हैं, उनके पास जाएंगे, लड़ो नहीं, सब लोग देख रहे हैं, चलो हटो, लड़ना ये तो कल लड़ लेना, बात खत्म हो जाएगी ना, हमारे मन पर उसकी छाप पड़ेगी और वो भी सहज भाव से चले जाएंगे कि लड़ना नहीं चाहिए। जो कुछ हम सारा दिन देखते हैं, देखो कुमारों के सामने एक समस्या आती है, कुमार लोग बताते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स बोर्डिंग्स लगे रहते हैं शहरों में, बड़े बड़े, ओ 1 किलोमीटर से दिखाई देने लगते हैं। अब अगर वो उन्हें सीरियसली देख रहे हैं तो वो छप गए, स्वप्न में आएंगे, और लाइटली ले रही है तो कॉमन बात है ना, लोगों ने अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारे लगाए हुए, इट्स नथिंग, सब जगह लगे हुए हैं, सहज भाव से तो वो चीज छपेगी नहीं। मामा को रमेश भाई कार में ले जा रहे थे बॉम्बे कहीं अंदर ही, तो रमेश भाई ने देखा मामा को कि मामा देख नहीं रही ये सब बोर्ड वोर्ड होर्डिंग्स जो लगे हुए, मामा देख नहीं रहे इनको, तो पूछा, मामा आप ये कुछ भी नहीं देखती हो क्या? क्या उत्तर होगा मामा का, बोलो। मामा जब सामने देखती है तो केवल आत्माओं को, और ऊपर देखती है तो शिव बाबा को, बाकी इन्हें क्या देखना है मुझे, इनमें कोई सार ही नहीं, ये हमारे मतलब की चीज नहीं है, हमें थोड़ा ही खरीदना है कोई फ्लैट, जो हम वो बिल्डिंग्स के जो बोर्ड लगे रहते हैं एडवर्टाइजमेंट के, ये फ्लैट बनाए हैं, फलाना टाउन बन गया है, इसमें से ले लो एक फ्लैट तुम भी, हमें लेना ही नहीं है, तो हम देखें क्यों। सहज भाव से जीने वालों का ब्रेन अनेक तरह के व्यर्थ से मुक्त रहता है, इसलिए उनका योग सहज हो जाता है। सभी जिनको योग में कठिनाई होती है, जो योग में बैठते हैं तो व्यर्थ ज्यादा चलता है, वो समझ लें कि दिमाग पर बुरी चीजें ज्यादा प्रिंट करते हैं सारे दिन में, सीरियसली देखते हैं चीजों को, लाइटली नहीं लेते, सहज भाव से नहीं लेते। सहज भाव से लेना प्रारंभ करें, योग अच्छा लगने लगेगा। जैसे सोचेंगे ना मैं आत्मा शांत हूं, फीलिंग होने लगेगी शांति, क्योंकि और चीजों का इफेक्ट नहीं है दिमाग पर, जैसे सोचेंगे मैं आत्मा परम पवित्र हूं, पवित्रता की फीलिंग होने लगेगी, क्योंकि बहुत सारे अपवित्र सीन देखे नहीं है सारा दिन। सहज भाव से दिनचर्या को व्यतीत करेंगे, सहज भाव से कार्य करेंगे और कराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे यहां सभी पूरे यज्ञ में हमें कार्य करने भी हैं और कराने भी हैं। जो सहज भाव से करते हैं, जो सहज भाव से कराते हैं, ज्यादा सफल होते हैं। और किसी को एक आदत पड़ी हो, मैं इंचार्ज हूं, ये काम करके आओ जल्दी, आदेश हो, आदेशात्मक शब्द बोले जाते हों, वहां कठिनाई पैदा होती है, दूसरों की भावनाएं हर्ट होंगी, कहीं ना कहीं दूसरों में असहयोग की भावना जगेगी। ठीक बात है, भाई लोग काम संभालते भी हैं, करते कराते हैं, होगा ऐसा नहीं, और बहुत अच्छे स्वमान से दूसरों की मानताओं को देखते हुए, हम महान हैं तो ये सब भी महान है ना, मैं इस देवी हूं तो ये भी तो इस देवियां हैं, मैंने भगवान को जीवन अर्पित किया है, इन सब ने भी किया है। इस भाव से कार्य करेंगे और कराएंगे, सहज भाव से बड़े बड़े काम पूर्ण हो जाएंगे और कठिनाई नहीं होगी, कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा, निर्विघ्न सेवा चलेगी। तो सहज भाव से कार्य करना कराना, इससे हमारे कार्य विघ्नों से मुक्त हो जाते हैं, समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं, इस पर सब बहुत अटेंशन देंगे। और जो सहज भाव से कार्य करते कराते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग रहेगी। जब हमने कार्य खत्म किया तो कार्य का कोई भी इंप्रेशन, कार्य के कोई भी संकल्प, उसमें हुए उतार चढ़ाव हमारे मन के विचारों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमें ऐसा लगेगा हमने जैसे कुछ नहीं किया। और जो कुछ आज किया है, आज पर ध्यान दें, वो बाबा को अर्पित कर दें, उसमें जो कुछ भी हुआ हो, सफलता असफलता, उतार चढ़ाव, किसी ने सहयोग दिया किसी ने नहीं दिया, सब तुमको अर्पित, प्रभु अर्पित, मन और हल्का हो जाएगा। ये सभी आदत डालें अपने को हल्का करने के लिए, तो योग अच्छा होगा ना। नहीं तो 6 बजे काम पूरा किया, 7 बजे मान लो योग में आकर बैठे तो चलने लगा, उसने आज ये कहा, ये काम अधूरा छोड़ दिया है, देखा उसने किया ही नहीं, अनेक संकल्प मन की दिशा को डाइवर्ट करते रहेंगे, हम इससे बच जाएंगे। जब हम सरल चित्त होंगे तो समस्याएं भी सरल हो जाएंगी, बहुत बड़ी चीज हो गई। समस्याओं के बारे में जितना ज्यादा मनुष्य सोचता है, समस्याओं को उलझाता है, खुद भी उलझता है, समस्याओं को बड़ा कर देता है। ध्यान देंगे, भाई चश्मे की जरूरत पड़ती है पढ़ने के लिए। व्हाट इफ समवन टेक्स एडवांटेज ऑफ योर इजीनेस, यह भी होता है, मैं इस पे आ ही रहा था। समस्याओं को भी हम सहज भाव से लेंगे, समस्याओं के बारे में ज्यादा न सोचकर समाधान के बारे में सोचेंगे तो समस्याएं हल्की होती जाएंगी। ये प्रश्न आया है कि जब हम बहुत इजी होते हैं, सरल होते हैं, तो कई लोग इसका डिसएडवांटेज भी लेते हैं। ऑफिसों में खास काम ज्यादा देंगे, ब्रह्मा कुमार है, बहुत सहज भाव से रहता है, सदा यश करता है, लो भाई ये और करो, दूसरे काम छोड़ेंगे, इन्हें करना पड़ेगा, ये भी बातें होती हैं। लेकिन सरलता के साथ, जैसे मैंने कहा था, शक्तिशाली, लाइट माइट, जन की दादी के शब्द, राइट लाइट माइट, सुने सभी ने, दादी जान की बोलती थी, राइट ज्ञान, राइट मिला है हमें सत्य ज्ञान, हम सत्य मार्ग पे चल चुके हैं, लाइट रहें। लाइट का अर्थ भी ज्ञान भी होता है, लाइट भी मिली है, ज्ञान मिला है, और हम बहुत हल्के रहते हैं उसको भी लाइट कहते हैं। लेकिन माइट, हम माइटफुल होकर भी रहें, हम अपनी अथॉरिटी में भी रहें, हम अपने स्वमान में भी रहें, तो ये परिस्थिति हमारे सामने नहीं आएगी कि हम बहुत सहज भाव से जीते हैं तो लोग मिसयूज करते हैं हमारी सरल नेचर को। ये प्रैक्टिकल समस्या आती है, घरों में भी आ सकती है, कहीं संगठनों में भी और ऑफिसों में तो बहुत आती है। इसलिए हमें अपनी अथॉरिटी में रहना, अपने स्वमान में रहना, ये भी आवश्यक है। मैंने देखा भाई 5 बजे तक ऑफिस है, हमने सब काम पूरा कर दिया, अब हम चले। एक दो बार ऐसा कहा, लोगों ने सोचा भाई ये तो बड़े पावरफुल व्यक्ति हैं, चल दिए। तो हमें अपनी शक्तियों को भी भूलना नहीं चाहिए, हमारी सरलता हमें भोला न बना दे। बाबा भोलानाथ है और सर्वशक्तिमान भी है, लेकिन वो ऐसा भोला नहीं कि कोई गड़बड़ कर बैठे। भोला है माना उसके चित्त पर कुछ भी बात ठहरती नहीं है। भोला है माना हम उसे थोड़ा सा देते हैं, थोड़ी सी मदद करते हैं और वो हमें राजाई देने आ जाता है, स्वर्ग का मालिक बना देता है। हमने उसको अपनी गलतियों की क्षमा मांगी, सहज क्षमा कर देता, यह है उसका भोलापन, निर्मलता। कुछ भी चीज अपने चित्त पे रखता नहीं है, लेकिन ऑलमाइटी भी है। जब आंख दिखाने की जरूरत पड़ेगी तो धर्मराज बन के सभी की खबर भी लेगा जरा। तो हम सब इन सब का बैलेंस रखेंगे तो ये परिस्थिति हमारे जीवन में कभी नहीं आएगी। परिस्थितियों पर और समस्याओं पर सभी को बहुत ध्यान देना है। मैं बाबा की एक बात क्लास में सुनाया करता हूं, उसको जोड़ दें इससे। समस्याएं क्या हैं? कमजोर मन की रचना। और बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य, कितना सीक्रेट है ये, कितने रहस्य भरे हुए इसमें, समझ लेंगे सभी। जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। ये नशा हमें शक्तिशाली बनाएगा, और जब हम सरल चित्त होंगे तो हमारे बहुत सारे व्यर्थ संकल्प बच जाएंगे, इससे भी हम शक्तिशाली हो जाएंगे। तो सरल नेचर हमें शक्तिशाली बनने में मदद करती है, और जब हम इन स्वमानों का अभ्यास करते हैं तो हमसे चारों ओर फैलने वाले वाइब्रेशंस, हमारे चारों ओर बनने वाला ओरा प्रभा मंडल हमें और सशक्त बना देता है, और कोई भी हमारी सरलता का मिसयूज नहीं करेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, हम सहनशील हैं तो भी लोग मिसयूज करते हैं ना, बहुत सहनशील है। लेकिन अगर हम स्वमान को भी साथ जोड़ते हैं, सहनशीलता के साथ सहन शक्ति भी धारण करते हैं, तो फिर इस समस्या को हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। तो हम इन 5 बातों को बहुत ध्यान देंगे। हम सरल, परिस्थितियां सरल, बीमारियां सरल, संस्कार सरल, संबंध संपर्क सरल, और हमारा योग भी सरल। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होगी, जो बहुत बड़ा सुख है जिसमें, कि कोई भी बुरी बात हमारे मानस पटल पर ठहरेगी नहीं। है या नहीं, ये बहुत बड़ी बात। आज जो कुछ हो गया आज ही रात को डिलीट हो जाएगा, और यदि नहीं होता तो हम उसे करके सोएं, डिलीट करके सोएं, मानस पटल से उसे मिटा कर सोएं। कैसे? नहीं और बताओ, याद करो, मैंने याद करें बाबा का महावाक्य, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शब्दों में बाबा ने एक बार तो कह दिया, रात को सोने से पहले सब बातें बाबा को सुना कर सो। आगे कितनी बड़ी बात कही आपको याद आ जाएगी, तो धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा। रोज अपना अकाउंट बाबा को दे दिया ना, तो धर्मराज अकाउंट मांगेगा ही नहीं, हमारा अकाउंट इनकम टैक्स वालों के सामने क्लियर हो, वो क्यों आएंगे छापा मारने, सब क्लियर है। तो रोज का रोज डिलीट करके सोएंगे। एक छोटा सा पत्र लिखने की आदत बना ले रोज बाबा को, रोज। हम ये भी कह सकते हैं वीक में लिखो, लेकिन वीक में लिखने में ठंडे हो जाएंगे, क्या है अगले वीक लिख देंगे, इस वीक तो कुछ गलती हुई नहीं, छोड़ो ना। देखो क्रिश्चियन रिलीजन में भी ये है ना, चर्च में लोग जाएंगे, एक ऐसा होता है होल सा, उसमें मुंह डाल के अपनी सारी जो कुछ किया है सब सुना देंगे और माफी मांग लेंगे और सोचेंगे माफ हो गया, अगले सप्ताह के लिए छुट्टी मिल गई कुछ भी करने की। फिर एक हफ्ता किया और फिर जाके सब कुछ सुना दिया, सोचा फिर माफ हो गया, फिर अगले हफ्ता कर लेंगे। ऐसे नहीं काम चलेगा। हम गलती करें, एक दो बार हुई, हमने बाबा को सुनाई और बाबा से ऐसी ब्लेसिंग ले लें, ऐसी शक्तियां ले लें कि वो गलती रिपीट ही ना हो। गलतियों के दाग तो रह जाते हैं लेकिन हल्के हो जाते हैं। वो दाग हमें योग बल से मिटाने पड़ते हैं, पर हल्केपन के लिए हम बाबा के सामने अपनी बातें रख दें तो बाबा को गुड नाइट करके भी सोएं, सवेरे उठें गुड मॉर्निंग भी करें। और एक सुंदर अभ्यास मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप अपनी नेचर बनाएंगे। पहले मैंने दिया है, कई ज्ञान सरोवर वालों ने शुरू किया होगा। सवेरे जब हम गुड मॉर्निंग करें, एक तो उठते ही करेंगे, करते हैं सभी, सभी की दिनचर्या की शुरुआत पहला ही संकल्प उठते ही प्रभु मिलन का हो, बाबा गुड मॉर्निंग, बिल्कुल दिल से। ये नहीं आदत पड़ गई बस ऐसे ही झूठ मूठ में कह दिया, बिल्कुल चाहे वहां पहुंचकर कहें, बिल्कुल सामने हैं हम बाबा के। और फिर देखें बाबा को, जब हमने नमस्ते की तो बाबा ने अपने आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पर रख दिया। फील कर लें थोड़ी देर, 10-20 सेकंड, उसके आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर आ गया, दृष्टि भी देने लगे। मुरली के समय फिर गुड मॉर्निंग और नमस्ते होती है बाबा को। मुरली के समय तो हम पूरी तरह चेतन हो गए, जागृत हो गए, ऊपर जाके करें और फील करें। जैसे ही हमने बाबा को नमस्ते की, बाबा ने अपनी हजार भुजाएं हमारे सिर के ऊपर फैला दी। रोज ये अच्छी फीलिंग कि बाबा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है, इसको ऐसी नेचर बना दें कि आगे विनाश काल में ये तुरंत याद आ जाए, बाबा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है। और रात को जब गुड नाइट करेंगे, बोलो क्या सुंदर अनुभूति करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, बाबा को गुड नाइट किया, ऊपर जाके करेंगे और बाबा ने प्यार से हमें गले से लगा लिया, फिर सिर पे हाथ रख दिया, आधा मिनट एक मिनट इस गुड फीलिंग में आकर फिर विश्राम करेंगे तो बहुत आनंद होगा। बस इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। ओम शांति।